में है तन में है यही उमंग।
बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग,
हम है राही रुकते नहीं,
इतना है दम थकते नहीं,
खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग।
शांति शक्ति की हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी।
ओम शांति। जैसा कि कल से एक विषय साक्षी की खोज चल रही है, तो कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी उसके रहे हुए जो शेष भाग हैं, आज हम उस पर पुनः यात्रा करेंगे, सहयात्री बनेंगे। कल के रिकैप में जहाँ से हमने ख़त्म किया था, समाप्त किया था, वो भय का टॉपिक था कि हम भयभीत क्यों होते, भय है क्या। भय है जब हम अंदर निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है, भयभीत होते हैं तो भय है क्या। वो भय है कि कहीं हम बुरे आदमी तो नहीं हैं, हम तो अच्छे हैं, भले मानस हैं, चरित्रवान हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब अंदर इस तरह के संकल्प चलते हैं, पाखंड के, घृणा के, नफरत के, बैर के, बदले के भाव इत्यादि इत्यादि, जब उन विचारों को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो बहुत भयंकर स्थिति है। तो कल हमने उस पर चर्चा किया था कैसे हम निरीक्षण करके इस भय से मुक्त हो सकते हैं। साक्षी दृष्टा की आज दूसरी स्थिति है प्रतिबंध, प्रतिबंध सेंसरशिप। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, अंतरावलोकन करते हैं, अंतर जगत में उन चीजों को देखने जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो पहले से हमारे अंदर संस्कार है, पहले से जो हमारे अंदर जो भी शिक्षाएं दी गई है, पुरानी शिक्षाएं, धर्म, जो कुछ भी हमें सिखाया है शुरू से, वो सिखाया है क्या, हमारे गुरुजी भी बचपन से, हमारे माँ बाप सभी क्या सिखा रहे हैं, क्रोध नहीं करो, क्रोध बुरी चीज है, ईर्ष्या नहीं करो, लोभ नहीं करो, ये जब ये इस तरह के कोई विचार आते हैं अंदर तो उसको रोको, यही सिखा रहे हैं ना। लेकिन बचपन से आज तक सुना तो हमने, लेकिन उस पर रोक लगी नहीं, ये शिक्षा इस तरह से काम नहीं करती है। तो हमें ये पुरानी शिक्षा से दूर, हमारी चेतना में जो हमारे संस्कार में जो हमने प्रतिबंध लगाए हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह के विचार नहीं करने चाहिए, ये चीजें हमारे साथ क्या काम करती है। क्या क्रोध हमें कर देना चाहिए, प्रश्न उठता है कि नहीं करना चाहिए क्रोध के विचार, तो क्रोध कर देना चाहिए। क्रोध कर देने से क्या होता है और क्रोध को रोक देने से क्या होता है। क्रोध को करने से, रोक देने से क्या होता है, चीजें हमारे अवचेतन में चली जाती है। नई शिक्षा क्या कहती है कि जिस चीज को भी हम दमन कर, रोक देते हैं, वो दमित हो जाती है और वो हमारे अवचेतन में सरक जाती है, जो बहुत बड़ा नुकसानकारी स्थिति हमारे लिए बनती है। वो कभी भी किसी भी परिस्थितियों में प्रकट हो सकती है और जो हम नहीं चाहते थे वो सब हो जाता है। तो दमन के भयंकर, और वो शक्तियां अंदर जाकर के हमारे शरीर को भी नुकसान करती है, क्रिपल करती है। प्रकट करना क्या संभव है कि क्रोध को फिर हम प्रकट कर दें? किसी ने हमें कुछ कहा तो फिर हम उसको उल्टा सीधा बोल दें? यदि दमन नहीं करें तो प्रकट करें। प्रकट करने से भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। प्रकट करने से बहुत बड़ा नुकसान हमारे जीवन के कार्य व्यवहार में, और ये नुकसान हमारे जीवन रक्षक तत्वों से जुड़ा रहता है। यदि आपका बॉस है और आप उसके सामने अपने क्रोध को प्रकट कर दिया, दमन नहीं किया, तो काम पूरा हुआ। जीवन रक्षक तत्व से जुड़ी हुई बात है तो वो भी नहीं हम कर सकते, तो फिर क्या करें? न रोकें न करें। एक हंसी की बात है, जीसस ने कहा कि जो तुम्हारे गाल पर तमाचा मारे दूसरा गाल आगे कर दो। सहनशीलता का स्वरूप है, बाबा कहते सहनशील बनो। हैं? हाँ, फिर दूसरा भी मिलेगा, और मिलता है। तब हमारी सहन शक्ति जवाब दे देती है, कहती अब हम सहन नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा सहन करो, लेकिन इतना नहीं कि तुम हमारा गला पकड़ लो, हमारे जीवन को ही खत्म कर दो। इतना सहन तो हम नहीं करेंगे, और फिर हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, जब हम साक्षी दृष्टा होकर के अंदर की तरफ अवलोकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि चीजें, पुरानी शिक्षा जो रोक लगाती है, तो हम अंदर चीजों को जब रोकते हैं तो वो चीजें या तो दमित हो जाती है या तो गोल गोल हम उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। जिस चीज को भी चेतना रोक देती है, जिस चीज को भी चित्त रोक देता है, उससे संघर्ष में ही पड़ जाते हैं। आपने सुना नहीं वो बंदर वाली बात, जो कहा कि बंदर को याद नहीं करो और वही याद, बंदर की याद आती रहती। जिस चीज का मना करो वही, जिस चीज को भूलना चाहो वही घड़ी घड़ी याद आती, और जिस चीज को याद करना है वो भूले रहती है। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम जो हो जैसा हो मुझे प्रिय हो, पसंद हो। क्या मैं जो हूं जैसा हूं उसे हम अंदर देख सकते हैं और उसके प्रति इस स्वीकार भाव को धारण कर सकते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे पसंद है। अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, सब ठीक है, सब मुझे पसंद है। और यदि हम समग्रता से चीजों को स्वीकार करते हैं तो रूपांतरण की स्थिति हमारे जीवन में बनने लगती है। दमन नहीं, रोकना नहीं है उसे, और पलायन नहीं करना है उन चीजों से कि भाग जाते हैं हम, तो पलायन नहीं करना है, दमन नहीं करना है। फिर क्या करना है? फिर जब हम साक्षी होकर के शांति से अपने अंदर निरीक्षण करते हैं तब क्या होता है? समग्र स्वीकार भाव क्या है जिसे रूपांतरित हो जाएगा? न नुकसान हो, न दमन हो, न नुकसान हो, न दमन हो, न पलायन हो, न उस चीज से जुड़ करके हम गोल गोल उसके चारों तरफ घूमते रहें। तो इसकी स्थिति है अंदर साक्षी होकर के, अवलोकनकर्ता की स्थिति में बैठ करके अंदर चल रही विचार और वृत्तियों को देखें। देखें का अर्थ है कि एक वृत्ति प्रकट हुई, एक वृत्ति बदले लेने की भाव की प्रकट हुई, लेकिन चूंकि मैं साक्षी दृष्टा हूं, विचार करता नहीं हूं, अवलोकनकर्ता की स्थिति में हूं, तो मैं उस स्थिति को, बदले के भाव को देखूंगा कि यह एक वृत्ति है, यह एक विचार है प्रकट हुआ। और हम अंदर इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि उस वृत्ति और विचार के साथ जो आवेग प्रकट हुए हैं वो हमारे शरीर के तल पर क्या क्या चीज प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसको भी हम शांत भाव से देखेंगे। जब हम दमन करते थे तब स्थिति दूसरी थी, जब हम प्रकट करते थे तब दूसरी स्थिति थी, लेकिन जब हम निरीक्षण कर रहे होते हैं तब एक तीसरी स्थिति होती है। हमें दिखाई देता है कि अंदर से एक ऊर्जा प्रकट हुई है, और वह ऊर्जा धीरे धीरे, चूंकि हम उसके साथ एक रूप नहीं होते, उसके साथ जुड़ करके उसके अनुरूप नहीं हो जाते, इसलिए हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, और वह वृत्तियां, वह जो ऊर्जा थी जो प्रकट हुई थी केंद्र से, धीरे धीरे शांत होने लगती है। वह ऊर्जा केंद्र में वापस चली जाती है, किसी तरह का नुकसान हमारे अंदर नहीं करती है। तो यदि हम साक्षी की अवस्था में जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तमाम तरह के प्रतिरोध, तमाम तरह के प्रतिबंध, तमाम तरह की सेंसरशिप हमारी चेतना पर से हम हटा दें और चीज़ें जो है जैसी है उसे देखें, तो हम साक्षी भाव में सहज स्थित हो सकते। नहीं तो जीवन के कार्य व्यवहार में यह समझ, पुरानी समझ, पुराना ज्ञान, क्योंकि मान लो कि सामान्य सी बात है, आपने कुछ कहा और मैंने प्रतिक्रिया नहीं किया, मैं सहन कर लिया, तो वास्तव में ये सहनशीलता बचपन से हमें सिखाती है कि हम नुकसान से अपने को बचाएं। कितना भी कह लो, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, लेकिन होता क्या है, बचपन से हमें यह अनुभव हुआ है कि झूठ बोलने से नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है झूठ बोलने से, सवेरे से शाम तक। और आप देखेंगे कि कम से कम हमारे जीवन में कोई आदमी ये कहे कि मैं सच बोलता हूँ, मुश्किल है, क्योंकि झूठ के बिना आदमी जिंदा रह नहीं सकता। जो स्थिति आज वर्तमान में हमारी, झूठ के बिना हम जिंदा रह नहीं सकते। पल पल पर हमें हमारे इस ज्ञान के विरुद्ध अनुभव है कि सदा सच बोलो, सच अच्छी बात है, हम उसे काम चलाऊ व्यवस्था की तरह लेते हैं, क्योंकि सच के बिना काम भी नहीं चल सकता। सारा झूठ सच पर ही चलता है, सारा झूठ। आप पर कोई विश्वास क्यों करता है, फेथ माना सच, आप पर विश्वास करता है कि आप बहुत बार उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, वो आपने जो, उसने जो कहा है आपने वो किया है, लेकिन कुछ मार्जिन आपके पास हरदम बनी हुई रहती है और उसी के आधार, तभी तो कहते हैं ये व्यक्ति इतना अच्छा था, धोखा कैसे दे दिया मुझे, झूठ कैसे बोल दिया इसने ये बात। लेकिन नहीं, ऐसा होता है। तो हम अपने सेंसरशिप को अंदर चेतना से हटाएं और चीजों को जो है जैसा है वैसा देखें, तो हम साक्षी भाव की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। साक्षी के लिए तीसरी स्थिति है निर्णय और चुनाव से मुक्त होकर के चीजों को देखना। हम सवेरे से शाम तक जजमेंटल रहते हैं, निर्णायक बने रहते हैं, हमारे पास च्वाइसलेस अवेयरनेस नाम की कोई भी चीज नहीं है, चुनाव रहित सजगता हमारे पास नहीं है। प्रतिपल हम चुनते हैं और निर्णय करते हैं। जीवन के कार्य व्यवहार में चुनाव और निर्णय की उपयोगिता तो बहुत है, सवेरे से शाम तक बिना इसके कदम भी नहीं चल सकते। इसका तो जीवन रक्षक तत्व से संबंध है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, हर एक जगह, चूंकि यह बुद्धि का स्वसंचालित विभाग है, फॉर्मेटरी ऑपरेटर्स है ये। यह हरदम तर्क तुलना निर्णय, तर्क तुलना निर्णय करता ही रहता है सवेरे से शाम तक, बिना इसके काम भी नहीं चल सकता। लेकिन जब हम आंतरिक रूपांतरण की बात करते हैं और जब हम साक्षी दृष्टा के संबंध में, इस संदर्भ में जब इसको देखते हैं, तो इसकी अलग स्थिति बनती है। निर्णय और चुनाव से मुक्त। चुनाव का क्या अर्थ है, कामना। चुनाव का क्या अर्थ है, कामना। कोई चीज हमें चाहिए, वो चीज हमें पसंद है, उस चीज को हम लाइक करते हैं और उसको पाने के लिए, उसका जीवन में उपभोग करने के लिए हम एक निर्णय लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए। चुनाव करते हैं, निर्णय करते हैं। जैसे हम चुनाव करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये फलानी बहुत अच्छी है, तत्क्षण हम कामना के तरंगों से अंतर तक कंपित हो जाते और चुनाव के इस जाल में जाके उलझ जाते, फंस जाते, और चुनाव के इस जाल में उलझा हुआ, फंसा हुआ व्यक्ति साक्षी कैसे हो सकता है, स्वतंत्र कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पसंद और नापसंद, यह हमारे चुनाव की स्थिति है सवेरे से शाम तक। और जब निर्णय शक्ति की बात आती है तो सामान्यतः हम निर्णय शक्ति की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, परंतु वास्तव में हमारे अंदर पूर्वाग्रह, मान्यता, दृष्टिकोण, अवधारणाओं से ग्रसित ऐसा झूठा मैं बैठा है जो प्रतिपल चुनाव करता ही रहता है। उसको करने के लिए, करने की स्वतंत्रता उसके पास नहीं है। संस्कारगत आदतें हैं मनुष्य की चुनाव करना और निर्णय करना। निर्णय की कोई भी शक्ति वक्ति हमारे पास इस तरह की नहीं होती है। यह आदत होती है जो बचपन से ही, पहले से ही हमने सभी चीजों के लिए निश्चित कर रखा है। कामना सभी चीजों के लिए निश्चित कर रखा है, पसंद नापसंद सभी चीजों के लिए निश्चित कर रखा है, और वो चाहिए कि नहीं चाहिए उसके लिए हाँ या ना करना सभी चीजों के लिए निश्चित कर रखा है। रखा है सवेरे से शाम तक सभी चीजों के लिए, पहले से ही हम निर्णायक हैं, पहले से ही चुनाव से हम ग्रसित हैं। तो हमारी आंतरिक स्थिति हम देख सकते हैं कि चुनाव और निर्णय नाम की कोई भी चीज हमारे पास नहीं है। इसलिए जिस चुनाव रहित सजगता की बात है, यानी सजग होकर के चुनाव करें, यह साक्षी दृष्टा की स्थिति में ही संभव है। हम साक्षी दृष्टा की स्थिति में सीट पर बैठ करके ही सही ढंग से पक्ष और विपक्ष से मुक्त होकर के सही अर्थों में चुनाव कर सकते हैं। हम कहते हैं ये चीज मुझे पसंद है, तो तत्क्षण आप चीजों में उलझ जाते हैं। उलझ जाते हैं तो फिर क्या होता है, कंपित हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं, और वही जो पहले हमने चुना था उस चीज को हम पहले चुनते हैं। अब जब साक्षी होते हैं और जब अपने अंदर विचार चलता है, अपने अंदर जो वृत्तियां उठ रही है चुनाव के प्रति, जब हम उसे देखते हैं तो उसके साथ एक रूपता की अवस्था में नहीं होते। उसे देखते हैं कि अच्छा ये चीज हमें चाहिए। हम ये नहीं पूछें कि क्यों चाहिए, जैसे ही हम कहते हैं क्यों चाहिए तो तुरंत उत्तर बना हुआ है। तो जब हमें कोई चीज दिखाई देता है अंदर कि क्या ये चीज मुझे चाहिए, तब हम ये नहीं पूछें कि क्यों चाहिए, लेकिन हम ये देखें कि ये चीज चाहिए, यह एक कामना का जगत, कामना की तरंग, कामना का एक संसार उठा हमारे अंदर, और ये क्या कर सकता है अभी देखते हैं। अब यहां आप चुनाव रहित सजगता की स्थिति में, अब आपको चुन नहीं रहे हैं, मात्र देख रहे हैं चीजों को, तो साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ करके अंदर, अपने अंदर यह आंतरिक अभ्यास और साधना है जो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, कर्म करावन हार बन, इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं। इतनी जागृति की अवस्था में हम कर्म कर रहे हैं, कार्थ है हम साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठे हुए हैं। तो ये चुनाव रहित सजगता को यदि हम धारण करते हैं तो हम साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ सकते हैं। तो चुनाव का व्यवहारिक संदर्भ है वो हमने देखा, लेकिन चुनाव और निर्णय का आंतरिक संदर्भ साक्षी दृष्टा के संबंध में अलग है, और यदि हम उसका अभ्यास करते हैं तो हम साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ सकते हैं। जीवन के कार्य व्यवहार में चुनाव और निर्णय के प्रति सजगता की स्थिति हमारी चाहिए हर एक जगह। साक्षी दृष्टा के संदर्भ में एक तीसरी अंतर्दृष्टि विचार के संबंध में देखते हैं। विचार के संबंध में चूंकि हम साक्षी हो रहे हैं, अंदर के जगत में तमाम तरह की वेगवान वृत्तियां, विचार की तीव्रता और इत्यादि इत्यादि चीजों के प्रति ही हम सजग और सावधान होते हैं, निरीक्षण करते हैं साक्षी दृष्टावन। तो विचारों के संदर्भ में आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं, और यह विचार के परिग्रह के संबंध में है, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और इसे एक एनालॉजी से देखते हैं, उपमा तुलना से, कि जीवन एक वृक्ष है और उसमें टाल टालियां और पत्ते हैं, वो अनेक तरह की समस्याएं हैं, और उन एक एक समस्याओं को यदि हम कितना भी चाहें हटा लें, मिटा दें, कोई भी समस्याएं हैं तो दूसरी समस्याएं फिर दूसरी पत्तियां पैदा हो जाती है। रक्त बीज की तरह आप एक समस्या को हटाते हैं दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी को हटाते हैं तीसरी पैदा हो जाती है, अंतहीन स्थिति बनी रहती है समस्याओं की। अब प्रश्न उठता है इस वृक्ष की जड़ क्या है, हम सोचते हैं कि टाल टालियों को हटाने से तो काम नहीं चलेगा, तो वृक्ष की जड़ क्या है? तो व्यर्थ विचार की जो तीव्र धाराएं हैं ये वृक्ष की जड़ है और इसको समाप्त करना है। लेकिन इसको कैसे समाप्त करें ये भी तो बहुत मुश्किल काम है। तो आप देखेंगे कि इस जड़ को पानी कहाँ से मिलता है, इस जड़ को पानी मिल रहा है कहीं से, तब तो ये वृक्ष हरा भरा है, तब तो जड़ भी ठीक है, पत्ते भी ऊपर चल रहे हैं। इस वृक्ष को पानी मिलता है इस भाव से, इस विचार से कि विचार के संग्रह से ज्ञान पैदा होती है और ये ज्ञान हमारे हैं, यानी विचार हमारे हैं और विचार ज्ञान युक्त है। तभी तो आप देखेंगे सवेरे से शाम तक कोई भी आपको विचार, आपके विचार को काटे तो आपको अच्छा नहीं लगता है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है और कहते हैं ये हमारे विचार हैं। तो विचार को ज्ञान की तरह हम धारण कर लेते हैं, जबकि विचार सेकेंड हैंड है, पराए हैं, बाहर से आए हुए हैं, चिड़िए की तरह है, हमारे पास बैठते हैं और उड़ के चले जाते हैं। जिस विचार को आप देखो सारे दिन में यदि एक ही जगह 50 लोग हो और 50 लोगों के विचार को नोट करें तो एक ही विचार को एक व्यक्ति कह रहा था मेरे विचार हैं, थोड़ी देर के बाद यदि आपको पता चला कि उसी विचार को एक दूसरा व्यक्ति कह रहा था मेरे विचार, उसी विचार को एक तीसरा व्यक्ति लड़ाई कर रहा था कह रहा था मेरे विचार, विचार हमारे कैसे हो सकते? यह तो स्मृति संग्रह यंत्र से प्रकट होते हैं। यदि सच्चाई देखें तो यह स्मृति संग्रह यंत्र से प्रकट होते हैं जो बचपन से हमने सीखा है, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सब बातों से हमने सीखा है। और इस स्मृति संग्रह यंत्र में जो बुद्धि का एक केंद्र है, इस स्मृति संग्रह यंत्र में जैसे ही चुनौतीपूर्ण कोई भी प्रश्न प्रकट होते विचार का आकार ग्रहण कर लेता और वो हमारे सामने आ जाता है। तो विचार स्मृति संग्रह यंत्र पर एक तरह की चैलेंजिंग चोट है प्रश्न का, जिससे विचार प्रकट होते हैं और वो आपने बचपन से ही सीख रखा है। आपके विचार नहीं है तो विचार के प्रति ये अंतर्दृष्टि की विचार सेकेंड हैंड है, पराए हैं, हमारे नहीं है, विचार के संग्रह से ज्ञान पैदा नहीं होता है लेकिन विचार की निर्जरा से ज्ञान पैदा होता है, विचार के आवरण से ज्ञान पैदा नहीं होता है, विचार के जागरण से ज्ञान पैदा होता है। और विचार की निर्जरा पूर्णतः विचार मुक्ति से ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसकी स्थिति प्रकट होती है। तो विचारों को यदि हम इस तरह से देखते हैं कि विचार सेकेंड हैंड है, पुराने हैं। एक बार मैंने एक व्यक्ति को सामने ऐसी बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा कि नहीं विचार तो नए, तो मैंने कहा आप एक नया विचार सुनाओ कोई, तो उसने कहा कि एक सफ़ेद हाथी आकाश में उड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नई बात है, हाथी और सफ़ेद और आकाश में उड़े, ये सब मैंने कहा कि इसमें नया क्या है, सफ़ेदी का भी आपको पता है, हाथी का भी पता है, आकाश का भी पता है, चिड़िया का भी पता है, इसमें नया क्या है, संयोजन है मात्र। विचार के प्रति वस्तु की अंतर्दृष्टि तो सही है कि विचार का वस्तु पर, संसार पर प्रभाव पड़ता है, विचार दुतारी तलवार है, फेंक करके उसे किसी को इंजोर किया जा सकता है। विचार तो बहुत सारे काम करते हैं, आशीष, वरदान, श्राप, सब चीज़ इससे जुड़ा हुआ है, इसका व्यक्ति के जीवन में प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन विचार का परिग्रह, यह सोच के जब हम विचार को संग्रहित करते हैं तो विचार को आप छोड़ कैसे सकते हैं? और इसलिए विचार छूटता नहीं है, कहीं गहरे में हम उसके प्रति आग्रह से भरे हुए हैं कि ये मेरे हैं, ये ज्ञान है, यह मेरी संपदा है, यह हमारी शक्ति है, उसमें से व्यर्थ चलते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जड़ में ये बात है हमारे अंदर कि ये मेरे हैं, इसे संग्रहित करना चाहिए। धन का संग्रह घातक है, ये तो सबको पता है, लोभी चेतना कहते हैं हम उसको। लेकिन विचार का संग्रह तो उससे भी घातक है। क्यों? क्योंकि धन का संग्रह तो चला जाएगा मृत्यु के साथ, मृत्यु पोछ देगी आपके सभी संग्रह को, चला जाएगा, लेकिन विचार का संग्रह मृत्यु भी पोछ नहीं पाती है। इसलिए आप देखेंगे ज्ञानियों के, पंडितों के अहम राजाओं के अहम से भी बड़े होते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वो ज्ञानी है, शास्त्रों का संग्रह, अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी बोलते थे, अथॉरिटी माना सत्ता, है वो शास्त्र से आया हुआ लेकिन उसे हमने अपनी सत्ता बना ली, और ज्ञान का इस तरह का संग्रह हमारे अंदर बहुत सारा ईगो पैदा करता है। ज्ञान में भी हमारे पास बहुत सारा ईगो पैदा होती रहती है, बात बात में, वो तो हम सभी जानते हैं, बात बात में प्रकट होती है। तो विचारों के प्रति परिग्रह की इस अंतर्दृष्टि को समझें तो हम विचारों से मुक्त हो सकते हैं। विचार सेकेंड हैंड है, पराए हैं, चिड़िया की तरह है, बाहर से आए हैं, उधार हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये काम चलाऊ व्यवस्था हमारे पास है विचार की। यदि इतनी अंतर्दृष्टि गहरी होगी तो धीरे धीरे विचार पर से हमारी पकड़ छूटती चली जाएगी, तब हम व्यर्थ विचारों से मुक्त होने में सहजता का अनुभव करेंगे। विचारों के प्रति दूसरी अंतर्दृष्टि पर ध्यान देते हैं। विचार मेहमान की तरह है, विचारों को मेहमान की तरह लें, उसे मेजबान नहीं बना दें। मेहमान आपके घर में आया और उसे आपने मेजबान बना दिया तो मुश्किल, अब आपको घर से जाना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी, अब मेहमान मेजबान बन गया है। विचार आकाश में बादल के टुकड़े की तरह, अच्छा देखो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसे थोड़े कहते हैं कि पक्षी मैं हो गया, कहते हैं बादल को देख रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, मैं बादल हो गया? नहीं। यदि आपके कमरे में रोशनी है और आप कमरे में आए तो आप रोशनी के साथ जुड़ के क्या कहते हैं, मैं रोशनी हो गया। अंधेरे कमरे में गए तो क्या आपके साथ उसके साथ जुड़ के कहते हैं मैं अंधेरा हो गया? नहीं कहते ना। फिर प्रश्न उठता है, विचारों के साथ जो अंतर आकाश में, मन के आकाश में विचार तैर रहे हैं, उसको कैसे पकड़ लेते हैं, हम उसके साथ जुड़ करके एक हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरे हैं। विचारों से मुक्ति की स्थिति, विचारों को छोड़ने की स्थिति क्या है? विचारों को हम पकड़े हुए हैं और वो पकड़ना क्या है, तादात्म्य स्थापित करना विचारों के साथ, विचारों के साथ एक रूपता की स्थिति को धारण करना। यदि हम विचारों के साथ एक रूप हैं तो हम उसे कभी भी छोड़ नहीं सकते। तो विचार मेहमान की तरह है, मेहमान अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, अच्छे विचार हो सकते हैं, बुरे विचार हो सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वे आएंगे और चले। विचार का एक स्वभाव है मरण धर्मा, प्रकट होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी हमारे पास से खिसक जाती है। हम हैं कि उसको एक रूपता की अवस्था में उसके साथ अपनी पहचान धारण करते हैं, पकड़ लेते हैं। क्या विचार का अर्थ है? सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि पकड़ लेते हैं हम विचार को पकड़ नहीं लेते हैं, विचार आपको पकड़ लेता है और आपको अपना रूप, आपको अपना वो चोला पहना देता है और आपको लगता है अरे मैं तो अब ये हूं। विचार पकड़ लेता है हमको, हम विचार को नहीं पकड़ते हैं कभी भी, विचार के साथ एक रूप हो जाते हो। और यह संस्कारगत व्यवस्था हमारी इस जन्म की थोड़े है, जन्मों जन्मों की व्यवस्था है, संस्कारगत व्यवस्था है, संस्कारग्रस्त हैं हम विचारों के साथ इस तरह काम करने के लिए। इसलिए बहुत सजगता चाहिए, बहुत जागरूकता चाहिए। इतने इतने समय से ज्ञान में चलने के बाद भी हम उस बात को पार नहीं पाते, फिर भी वो चीज़ें हमें पकड़ लेती है, इसलिए सतत काम करना पड़ेगा, जागरूकता की स्थिति धारण करनी पड़ेगी। तो विचारों के प्रति इस अंतर्दृष्टि को हम समझें कि विचार बादल की तरह हैं, आते हैं और जाते हैं, और साक्षी चेतना आत्मा आकाश सदा विद्यमान वहाँ रहती है। एक छोटी सी कहानी, एक राजा अपने मंत्री को बुलाया और उसने मंत्री से कहा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाओ, कोई ऐसा चीज़ ताबीज़ बनाओ जिसमें ये लिखा हो कि मुश्किल परिस्थितियां जब आएगी तब मैं उसे देखूं और उसमें उसका समाधान हो, कोई भी मुश्किल परिस्थिति आए मेरे पास और उसमें उसे देखूं और उसका समाधान मिल जाए हमें। अब बेचारा मंत्री परेशान सोचने लगा। उसी समय राज्य में कोई बहुत बड़ा सन्यासी आया था, वो सन्यासी के पास गया और सन्यासी से अपनी स्थिति बताई। सन्यासी ने कहा ठीक है, उसने कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिख के दिया और कहा कि इसको उस ताबीज़ में बंद करके रख दो और राजा की अंगूठी में डाल दो। राजा की अंगूठी में डाल दी, आई गई, बात पूरी हुई, कुछ समय के बाद चढ़ाई हुई और राजा उस लड़ाई युद्ध में हार गया और हारने के बाद वो भाग रहा था, पीछे घुड़सवार और सैनिक, शत्रु सैनिक पीछा कर रहे थे उसका। एक पहाड़ की ओट में वो अपनी जान बचाई और तत्क्षण उसकी नज़र उस अंगूठी पर गई। कहा कि अरे इसमें क्या है, इस मुसीबत के समय देखे तो सही। उसने उस अंगूठी को खोला और उसमें से निकला क्या लिखा हुआ था, ये भी बदल आई गई, बात पूरी हुई। राजा ने फिर अपने राज्य पर, अपने शत्रुओं पर फतह विजय पाई और राज्य में फिर प्रवेश कर रहा था, ढोल दुमदुबी नगाड़े सबके साथ परी। और तत्क्षण राजा की नज़र फिर से उस अंगूठी पर पड़ी और राजा ने कहा कि अरे ये भी बदल जाएगा, ये भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है यहाँ, सब कुछ बदल रहा है, बचपन जवानी बुढ़ापा सुख दुख सब चीज़ बदल रहे हैं। वो जो अपरिवर्तनशील केंद्र है साक्षी, वो सदा चीज़ों का विटनेस है, वो देख रहा है। बचपन में आप कहते थे एसोसिएट होकर कि मैं बच्चा हूँ, लेकिन अब जब बुढ़ापे में है तब वो आपको पता चलता है कि बचपन में क्या क्या हो रहा था। बचपन पता चल रहा है, जवानी भी पता चल रहा है। एक यात्री है जो इन सभी स्टेशनों से गुजर करके अब यहाँ आ गया, और यहाँ अब हम एक रूप हैं बुढ़ापे में कि अब मैं बूढ़ा हूँ। तो इस एक रूपता को तोड़ने के लिए कि वह जो परिवर्तनशील है और वह जो अपरिवर्तनशील केंद्र है साक्षी का, वो सतत बदलता नहीं बदलता है, और वह जो है सतत बदलता रहता है। दिन आती है, रात आता है, दुख आते हैं, सुख आते हैं, जिंदगी तमाम होती है, सब कुछ बदल रहा होता है। तो साक्षी की तीसरी अंतर्दृष्टि, विचार और मन। यदि आप अपने अंदर मन को ढूंढने जाएंगे तो कहां पाएंगे आप? मन नाम की कोई चीज आपको मिलेगी नहीं, वहां क्या मिलेगी? विचार की क्रियाशीलता। जब आप मन को ढूंढने जाएंगे अंदर तो वहां मन नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, विचार की क्रियाशीलता मिलती है। विचार सतत चल रहे होते हैं और वो विचार ओवरलैपिंग होते रहते हैं, एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तो उसके बीच में कोई स्थान भी नहीं दिखता है, और तब हमको लगता है कि विचार का अस्तित्व है। और इस तरह से हम विचार के साथ जुड़ करके हम विचार का स्वरूप धारण किए रहते हैं। तीव्रता से बदल रहे विचार और विचारों के ऊपर विचार की जो ओवरलैपिंग चल रही होती है, यदि हम शांत और सजग हों थोड़ी देर, ध्यान का इसीलिए महत्व है, योग का इसीलिए महत्व है कि थोड़ी देर हम शांति के माहौल में बैठते हैं, थोड़ी देर विचारों के विराम शुरू होते हैं, विश्रांति की स्थिति आती है, सब कुछ शांत होता है, तो धीरे धीरे पता चलता है कि विचार अब कम हो गए हैं। और धीरे धीरे पता चलता है कि एक विचार के बाद थोड़ी देर कुछ शांति सी रही, फिर दूसरे विचार आए, और तब उस निरीक्षण में पता चलता है कि विचारों के बीच में अंतराल आ गया है। और यदि अंतराल आ गया है तो वो मैं कैसे हो सकता है, विचार का एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है? अब तो वहां एक दूसरा अस्तित्व भी पैदा हो गया है जो खाली है बैठा। यदि ध्यान गहरा होता है तो उस शांत सजगता में, उस मौन तटस्थता में पहली बार उस अतिथि आत्मा का आगमन होता है, और तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर वो जो शक्ति है, वो जो सत्ता है, वो जो साक्षी दृष्टा है, वो जो आत्मा है, वो हमें दिखाई देता है। तो विचारों की सतत तीव्र धारा से और विचारों के बीच में जब हम अंतराल पैदा करते हैं साक्षी दृष्टा की स्थिति में, तब हम साक्षी के सीट पर स्थित हो सकते हैं। और फिर कभी, फिर शायद 28, फिर हम इस पर और चर्चा करेंगे। ओम शांति।
तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई।
तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई।
भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला।
भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला।
प्रभु से मिली मन की मंजिल,
रहता यही हमारा दिल,
आई बहारें ये लेके तरंग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, हम है राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं, खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग।